जलती शमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए।
प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्थ अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा।
पंजाब और हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में उत्तरा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1955 में जम्मू में हुआ। बाल्यकाल से ही आप आध्यात्मिकता में विशेष रुचि रखती थीं। इसके अलावा आप एक श्रेष्ठ और दिव्य जीवन की खोज में थीं जो सांसारिक जीवन से अलग हो। इस अलौकिक जीवन की खोज में आप सन 1960 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आईं। आपको पहली बार सन 1962 में बटाला में मातेश्वरी जगदम्बा से मिलने का सौभाग्य मिला। आपका संस्था के मुख्यालय माउंट आबू मधुबन में सन 1967 में आना हुआ। मधुबन की दिव्य अलौकिक पालना से प्रभावित होकर आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। आपने अमृतसर बटाला में ईश्वरीय सेवाएं देते हुए सन 1974 से चंडीगढ़ में राजयोगिनी अटल दीदी जी के साथ सेवाओं का कार्यभार संभाला। समाज में आध्यात्मिकता की लहर जन जन तक फैलाते हुए आपने अटल दीदी की साथी बनकर अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप अभी भी बाबा की आज्ञाकारी बनकर सबको सम्मान देते हुए सच्चाई की उदाहरण मूर्त बनकर अपनी सेवाएं दे रही हैं। मां समान पालना देते हुए आपने अनेक बहनों को शिव शक्ति स्वरूप बनाया। इन्हीं राजयोगिनी शिव शक्तियों को साथ लेकर आप चंडीगढ़ की विशाल सेवाओं को संभाल रही हैं। आपकी पालना में हजारों भाई बहने इस ज्ञान का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं।
बचपन से ही अलौकिक आध्यात्मिकता की बातों में रुचि थी और आध्यात्मिक परिवार में ही जन्म हुआ और माता पिता के द्वारा भी आध्यात्मिक पालना की बात मिली। भक्ति भावना तो थी परंतु मुझे ऐसा लगता था कि जीवन दुनियावी जीवन से कुछ अलग होना चाहिए। जिस जीवन से अनेक आत्माओं को प्रेरणा भी मिले, अनेक आत्माओं की सेवा में काम आ सके, मैं कुछ विशेष कर सकूं, ये मेरी चाहना थी। और बड़ों के प्रति आदर सत्कार की भावना बचपन से थी और उसके साथ साथ ईमानदारी से चलना, सच्चाई से चलना, झूठ या चोरी से मैं दूर रही। और जो जो बड़े हुए तो ये संकल्प ज्यादा आगे बढ़ने लगा, मेरी रुचि बढ़ने लगी आध्यात्मिकता की ओर और अच्छे पुस्तकों का संग या संत महात्माओं का संग, जैन साधुओं के प्रवचन सुनना मुझे अच्छा लगता था। दुनिया में रहते भी ये चीजें मुझे बहुत पसंद थी और सोचती थी कि इसे भिन्न जीवन हो। बटाला शहर में डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के पास अमृतसर के पास आध्यात्मिक ज्ञान की लहर चल रही थी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। उस सत्संग के अंदर वो बहनों के प्रवचन सुनने के लिए लौकिक माताजी जाया करते थे। तब उन्होंने मुझे भी प्रेरणा दी कि एक ऐसा स्थान है जहां स्वयं ईश्वर पिता का ज्ञान सुनाया जाता है और तुम्हारे जैसी छोटी उम्र की बहनें हैं, कन्याएं हैं, जो ऐसा जीवन लेके चल रही हैं। तो मैं कुछ टाइम सुनती रही, फिर इच्छा बनी कि मैं भी जाकर उन बहनों को देखूं, मैं भी उनकी विचारों को सुनूं, क्योंकि मुझे इच्छा थी कि जीवन कुछ अलग से होना चाहिए। तो जब मैं प्रथम बार विद्यालय में पहुंची, मेरी दो फ्रेंड भी साथ में थी और वहां मेडिटेशन चल रहा था, योग का अभ्यास चल रहा था, और उस योग के कक्ष में जब हम जाके बैठे तो एक बहन सामने योग करा रही थी। उनको देख के उनका रूहानियत भरा चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगा। उस योग साधना के रूप को देख के मेरा मन आकर्षित हुआ और मुझे लगा कि जो मैं चाहती थी ये पथ मुझे मिल गया, जिसकी मुझे तलाश थी वो राह मुझे मिल गई। और जब मैंने प्रथम बार मातेश्वरी जी को देखा, बहुत सादा सुंदर लिबास, आकर्षण में सूरत, जिस सूरत से रूहानियत झलक रही थी, मामा के मधुर वचन कुछ दिन तक सुनते रहे और विश्वास बढ़ गया कि सत्य ही पिता परमात्मा धरा पे अवतरित हो चुके हैं और सरस्वती माँ जिसका गायन, पूजन, वंदन भक्ति में किया या सुना था, वो आज मेरे सामने है। मेरे साथ एक बहन खड़ी थी, मैं सोच रही थी कि कैसे पहचान होगी कि यही मातेश्वरी जी हैं। तो बड़ी विचित्र सी बात लगी, एक बहन जो मेरे साथ खड़ी थी बिल्कुल अंधी थी आंखों से और उसके हाथ में फूलों की माला थी। तो मैंने उससे प्रश्न किया कि बहन कैसे पहचानेंगे कि बहुत सी बहनें हैं और सरस्वती कौन हो सकती है, कैसे मालूम चलेगा। तो उसके दृढ़ वचन विश्वास सहित सुने, अभी देखना हम उसे पहचान लेंगे। तो मेरी नजरें इसी तलाश में थी। मातेश्वरी जी तीसरे नंबर पे थे, उसके पहले दो बहनें गुजरी। उस बहन के फूल वाले हाथ माला वाले उठे और नीचे हो गए। तीसरे नंबर पे जब मातेश्वरी जी आए तो उस बहन के हाथ उठे, फूल माला मां के गले में अर्पण की, मामा ने हाथ मिलाया, मधुर वचन कहे, बेटे कैसे हो। उसके पश्चात मामा की ज्ञान वाणी सुनने, वो वीणा की मधुर झंकार सुनने के लिए हम रोजाना जाते रहे। और बहुत अच्छा पल लगता था जब मामा सामने बैठ के मधुर वीणा की झंकार अपने मुख वचनों से सुनाते थे। और जिस दिन मामा वापस जाने वाले थे, सभी बच्चे भाई बहनें मामा से मिल रहे थे, आंसू भी बह रहे थे। और जब मेरा समय आया मामा से मिलने का, तो मुझे लगा कि ये सुनहरे पल फिर मुझे कब मिलेंगे, क्या मैं अपने जीवन में ऐसी सेवा कर सकूंगी। तो मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन जब मातेश्वरी जी के पास उनसे मिलना हुआ, मामा ने बहुत प्यार भरे हाथ सिर पे फेरे, बहुत प्यार से दुलार दिया, स्नेह दिया। और मामा के ये वचन थे उनके मुख से निकले हुए कि बच्ची तुम्हें तो सेवा करनी है, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, तुम्हें बहुत सेवा करनी है। और तब साथ ही साथ अचल दीदी को बुला के बोला, किस बच्ची का ध्यान रखना, ये बच्ची सेवा में बहुत सहयोगी बनेगी, ये बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी। तो मुझे और ज्यादा विश्वास, खुशी इस बात की हो रही थी, कि स्वयं मातेश्वरी जगदम्बा के मुख से वचन निकले हैं। अब नजरों को तलाश थी कि बाबा कैसा होगा और साथ में संकल्प चल रहा था कि परमपिता परमात्मा तो बहुत ऊंची हस्ती हैं और साधारण ब्रह्मा बाबा के तन में आए हुए वो भी महान हस्ती हैं, तो भला हम उनसे कैसे मिल पाएंगे, क्या हम ऐसे बात करेंगे, ये संकल्प मन में था। तो ब्रह्मा बाबा से मिलने के साथ साथ जब जब बाबा के कमरे में जाना हुआ तो बाबा एक ही बात मुझे बार बार याद करा रहे थे कि बच्ची तुम्हें सेवा करनी है, सेवा में भेजूं जाओगे? तो मैं हां में सिर हिलाती हां जी बोलती, तो मुझे लगता था कि मैं सेवा कैसे करूंगी, मुझे कुछ आता नहीं, समझाना ज्ञान नहीं सुना सकती। पर बाबा को इतना विश्वास कि बाबा बार बार अपने मुख कमल से एक बात पक्की करा रहे थे, तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें सेवा करनी है। तो सेवा की शुरुआत भी यूं हुई कि उन दिनों में मुंबई में सेवा के लिए प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया था। दादी प्रकाश मणि जी तब वहां पे थे, तो बाबा ने अचल दीदी को वहां भेजने के लिए बोला, जाने के लिए बोला कि बच्चे तुम्हें सेवा के सहयोग के लिए वहां जाना है। तब मुझे भी उनके साथ जाने का हुआ। तभी बाबा ने ये कहा, बच्चे मुंबई तो माया नगरी है, आप जा रहे हो घूमना फिरना भी, लेकिन सेवा भी करनी है। तब मैंने सर दीदी से कहा कि आज मुझे भी साड़ी पहन के जाना है और वहां सेवा करनी है। ऐसा ही हुआ और मैंने जाके जो ग्रुप दे रहे थे सेवा के लिए उनसे यही कहा कि मुझे भी आज ग्रुप दें ताकि मैं भी सेवा कर सकूं, कि बाबा की आवाज मेरे कानों में बार बार गूंजती है, बच्चे तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें सेवा करनी है। वो मेरी शुरुआत थी सेवा की। अमृतसर में बहुत बड़ा एक्टिवेशन था, बहुत से भाई बहने, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहने वहां आए हुए थे, क्लास चल रहा था, सबका परिचय हो रहा था। दादी चंद्रमणि जी ने पिताजी से पूछा, आपके परिवार में कौन चलता है ज्ञान में? तो पिताजी ने बताया। तब दादी जी ने पूछा कि क्या आप बच्ची को सेवा के लिए कब छुट्टी देंगे? तो पिताजी ने बोला, आप ही की बच्ची है, शिव बाबा की बच्ची है, आप ले लीजिए। तब मुझे पीछे से आगे बुलाया गया और पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ के दादी चंद्रमन जी के हाथ में दे दिया कि आपकी है, आप संभाले सेवा के लिए। तो वो दिन था कि जिसका मुझे इंतजार था, इस रीति से समर्पण हो गया। समर्पण के पश्चात कुछ समय बटाला सेवा केंद्र पर रहना हुआ। वहां पे अचल दीदी के साथ रह के सेवा करने का ढंग सीखा और भाषण करना सिखाया, कोर्स करने की बात सिखाई और बाबा के महावाक्यों के प्रति हमारी धारणा कैसी हो, महावाक्यों के प्रति कितना सत्कार भाव हो, ये सब सीखा। मन वचन कर्म की सेवा हमें किस तरह से करनी है, रुचि से करनी है, ये सब सीखने को मिला। और ऐसा ही लगता था कि भगवान के घर की सेवा कर रहे हैं। भगवान ने ये सुंदर मौका दिया है, इसलिए सेवा करते बहुत खुशी होती थी। हर कर्म करना सिखाया, ना केवल कह के लेकिन अपने कर्म से हमें कर्म करना सिखाया। और कुछ समय 2 साल के करीब बटाला में रहने के साथ साथ अमृतसर जाना हुआ दादी चंद्रमणि जी के पास। दादी चंद्रमणि जी जिस तरह से स्वयं में धारणा मूर्त थे, बाबा के प्रति अटूट प्यार, तपस्या अखंड उनकी चलती थी, उनके पास रह के हमें वो सीखने का मौका मिला। और बड़ों के द्वारा हमें ये सीखने को मिला कि हमेशा हर कर्म करने से पहले हम बड़ों से पूछें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। हर बात में हाँ जी का पाठ पढ़ना सिखाया। 2 वर्ष तक अमृतसर में दीदी चंद्रमणि जी के साथ रहने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम सेवा के क्षेत्र में तो रहेंगे, हमारा जीवन साधारण सिंपल भी हो और वचन कर्म बहुत ऊंचे हों। '68 में अचल दीदी चंडीगढ़ आए, उसके कुछ समय के बाद दादी चंद्रमन जी ने हमें भी सेवा अर्थ चंडीगढ़ भेजा। और चंडीगढ़ आने के पश्चात सेवा का और खुला मैदान हमें मिला। हमने देखा कि किस तरह से वो इकोनॉमी से यज्ञ के प्रति उनका कितना प्यार, कितना अटूट स्नेह था, जो आज भी हमें उनके मार्गदर्शन, उनके बताए हुए नियम हमारे सामने हैं। अचल दीदी जबकि इतने संपन्न आगे बढ़ते हुए थे, बाबा से मिले हुए थे और आगे उनका जीवन बहुत आगे बढ़ रहा था, हमने उनके जीवन में देखा कि जहां भी कहीं सेवा के विशेष आयोजन होते, बड़े बड़े कार्यक्रम मेले जैसे होते और दीदी वहां पहुंच के पूरा दिन रात एक करके सेवा में अथक होकर जुटे रहते। चाहे तबीयत ढीली भी हो लेकिन तो भी दीदी को लगता, हम भले उनको कहते कि दीदी आप आराम करें, रेस्ट करें, ये काम बाद में हो जाएगा, लेकिन दीदी का जवाब मिलता कि बाद में नहीं, अभी करना है। हर काम के प्रति उनकी रुचि इतनी ज्यादा, इतना अधिक ज्यादा प्यार कि जो भी काम सामने है सेवा का, उसे तुरंत करने का है, अभी करने का है। तो तन से, मन से, समय से, संकल्प से दीदी उस सेवाओं में तत्पर होते। कई बार उनको देखते थे कि सर्दी की मौसम है, ठंडी है, लेकिन वो भाग रहे सेवा में, और हमने रोकते तो बल्कि वो नाराज होते कि नहीं, मुझे सेवा से मत रोको। और वही चीज हमें उनसे देखने को, सीखने को मिली कि सादा लिबास हो, ऊंचाई की तरफ नजर करें। कभी कभी अगर हम हंस के कह लेते कि फलां सेंटर पे ऐसा है, फलां जगह ऐसा है, तो दीदी बोलते ऐसी बात तो मेरी इस नहीं करनी, अगर इस करनी है तो बड़ों को देखो, दादियों को देखो, उनके गुणों को देखो, वो किस तरह से बाबा की सेवा में है, वो कैसे सेवाएं कर रही है, मुझे उनको देख के चलना है और आपको भी वो देखना है। तो ऐसा दीदी हमें सिखाते और क्लास के प्रति उनकी इतनी अधिक ज्यादा रुचि होती कि समय से पहले क्लास में पहुंचा जाए और अपनी योग की स्थिति इस तरह की हो कि वहां बैठ के आत्मों को हम शक्ति दे सकें। तो जब बाबा अव्यक्त बाबा से मिलना हुआ प्रथम बार, तो बाबा ने बहुत सुंदर शिक्षाओं से सजाया। बाबा ने कहा, बच्चे आबू तीरथ है, आपको आना होगा, आते रहेंगे, यूं ही मिलन का मेला चलता रहेगा। तो ऐसा चलते चलते बहुत बार बाबा से नजदीक से मिलना हुआ, बाबा ने वरदान भी दिए। पंजाब में कुछ माहौल इस तरह का था, बाबा से मिल रहे थे, बाबा टोली दे रहे थे और बाबा ने पूछा कि बच्चे डर तो नहीं लगता, तो हमने कहा बाबा आप साथ हैं तो डर कैसा। तो बाबा का आगे महावाक्य था कि आपकी ज्ञान तलवार उनकी दूसरी तलवार होगी, लेकिन आपकी ज्ञान तलवार उनकी तलवार के वार को काटेगी, वो रोक नहीं कर नहीं सकेंगे। इस तरह से बाबा को एक बार मैंने ग्रीटिंग भेजा और बहन ने जब ग्रीटिंग कार्ड बाबा को दिया तो बाबा ने बोला पढ़ के सुनाओ। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी उस गीत की, बाबा ने वो सुनी तो बाबा ने कहा बच्ची को कहना जैसे वो मुझे याद करती है मैं भी उसको याद करता हूँ। बहुत स्नेह से बाबा ने रिस्पांस दिया और मुझे यूं लगा कि बाबा मेरे सामने हो, मुझे सामने से कह रहे हों। पर अब भी ऐसा ही लगता है कि बाबा सदा साथ है और उनका आदेश निर्देश हमारे साथ है और उसी के आधार पर हम आगे चलते जा रहे हैं और बाबा यूं ही साथ देते हुए, साथ निभाते हुए हमें आगे बढ़ा रहे हैं।
बहुत करके उनको कर्म करते हुए भी बाबा की यादों में मस्त देखा जा सकता है और इतने सीनियर होते हुए, पूरे चंडीगढ़ सर्कल के इंचार्ज होते हुए भी हमने देखा उत्तरा दीदी बहुत निरहंकारी है। आज भी उनको इस आयु में भी किचन में जाकर के छोटे छोटे काम करते देखा जा सकता है। अगर उनको कोई उनका बड़प्पन याद दिलाता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा कहते मिलते हैं, बहनों मैं तो तुम्हारी सखी हूँ, बहनों के साथ वो सखी हैं और स्टूडेंट्स के आगे टीचर भी हैं तो उनके हम शरीक भी हैं। तो इसलिए उत्तरा दीदी को जो शिव बाबा ने नाम दिया था योगिनी, वो उनका नाम सार्थक होता है। उनके नयनों में बाबा के प्रति प्यार, विश्वास और एक गहरी प्यार की लगन सच्ची गोपिका वाली देखी जा सकती है।
उत्तरा दीदी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है। बाबा का एग्जाम्पल बनकर दिखाया उन्होंने, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, उन्होंने अपनी लाइफ में इसे समाया हुआ है। उन्हें जब भी हम देखते हैं तो हमेशा उनका ये मीठा विनम्रता का व्यवहार हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है।
उत्तरा दीदी जी का नाम योगिनी दीदी भी है, तो जैसा इनका नाम है वैसी योग्यताएं या योगी जीवन इनका विशेष अभी तक हम देख रहे हैं। इनको हमने जो देखा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना और ये बड़ों का रिस्पेक्ट करते अति, और जितने भी टीचर्स बहने हैं इनके साथ विशेष सखी रूप में रहते हैं, जिसके कारण हर बहन इनको अपने दिल की हर बात कह पाती है। 21 वर्षों के अंदर हमने देखा कि जितने भी बातें जितने भी बहनों ने इनसे की, तो कोई भी बात कहीं पर भी लीक नहीं हुई। तो ये इनका बहुत बड़ा गुण है और इसी गुण के आधार पर हम सब इनके नजदीक आते हैं।
बहन जी से हमें एक एक बात, निमित बनकर कैसे रहना है, बड़ों के आगे निर्माण बनकर चलना, उनमें पालना देने का सहज संस्कार है, और इसी तरह से अपनी बात किसी को भी कोई बात समझाने से पहले वो दो बार जरूर सोचते हैं कि ये बात कहीं उसको बुरी ना लगे, या कोई और तरीके से भी कहा जाए जो शिक्षा भी दी जाए और उसके दिल को अच्छी भी लगे। इस तरह से सोचकर बहुत सॉफ्टली, बहुत निर्माणता से बात कहने, ये हमारे उत्तरा बहन जी की विशेषता है।